नमस्कार जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। सिंगापुर में मंगलवार को कोविड के 11,504 नए मामले आए, जो 3 महीनों से अधिक समय में संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने लोगों को आगाह किया कि संक्रमण की ताज़ा लहर उम्मीद से कहीं अधिक पहले आ गई है। उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने कहा कि आगामी हफ्तों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की आशंका है। कोविड बहु मंत्रालय कार्यबल के सह अध्यक्ष वोंग ने सोमवार को कहा था कि अभी इस स्तर पर कोविड सुरक्षा उपाय कड़े करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामलों में वृद्धि ओमिक्रॉन के नए उप स्वरूप BA.4 और BA.5 के कारण हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने मंगलवार को चीनी अखबार लियानहे जाओ बाओ से कहा, मैंने पहले भी कहा था कि अगली लहर जुलाई या अगस्त के आसपास आ सकती है, लेकिन अब ये यहाँ थोड़ी पहले आ गई है, संभवतः जून की छुट्टियों के कारण। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक संक्रमण के 14,25,171 मामलों की पुष्टि की है। इस बीच मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 18 माह के एक शिशु की इंसेफेलाइट्स के साथ ही कोविड श्वसन संबंधी वायरस और एंटेरो वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई। सिंगापुर में कोविड के कारण 12 साल तक के उम्र वाले किसी बच्चे की मौत का ये पहला मामला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब ये पता चला कि तत्कालीन महान्यायवादी ने चुनाव में धांधली के उनके दावों को सार्वजनिक रूप से नकार दिया है, तब ट्रंप ने अपने खाने की थाली इतनी जोर से फेंकी कि वो दीवार से टकरा कर टूट गई और केचप फैल गया। इसके अलावा उन्होंने 6 जनवरी 2021 को अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि मेटल डिटेक्टर हटा लिए जाएं ताकि वॉशिंगटन में भाषण के लिए एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों को दिक्कत ना हो। हालांकि कुछ के पास हथियार थे, मगर ट्रंप ने कहा कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं आए थे। उसी दिन जब उन्हें कैपिटल के बजाय व्हाइट हाउस ले जाया जा रहा था, तब वो क्रोधित हो गए और कहा, मैं राष्ट्रपति हूँ, मुझे अभी कैपिटल ले चलो। इसके बाद ट्रंप ने वाहन की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। एक व्यवसायी के रूप में ट्रंप के गुस्से की चर्चा हर तरफ रही, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किसी ने इसका जिक्र नहीं किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के समय व्हाइट हाउस की कर्मचारी रही कैसिडी हचिनसन ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान उक्त बातों का खुलासा किया। हचिनसन ने कुछ तथ्यों का खुलासा किया और बताया कि कार्यकाल के अंतिम दिनों में ट्रंप किस तरह आपा खो बैठते थे। व्हाइट हाउस की पूर्व कर्मचारी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को पता था कि उनके समर्थकों के पास हथियार हैं, जिन्होंने बाद में कैपिटल में दंगे किए थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक आतंकवादी बनने और आतंकवादी देश का नेतृत्व करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र से रूस को निष्कासित करने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को वीडियो के जरिए संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र से रूस के यूक्रेन की धरती पर अंजाम दिए कृत्यों की जांच करने और उस देश को जवाबदेह ठहराने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का आग्रह किया। जेलेंस्की ने कहा, रूस द्वारा की जा रही इन हत्याओं को रोकने के लिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने आगाह किया कि ऐसा न करने पर रूस के आतंकवादी कृत्य अन्य यूरोपीय देशों और एशिया में भी फैलने लगेंगे। जेलेंस्की ने कहा, पुतिन एक आतंकवादी बन गए हैं, हर दिन आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, सप्ताहांत भी नहीं रुक रहे, हर दिन वो आतंकवादियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र से रूस को बाहर करने का आग्रह करते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 6 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक सदस्य देश जिसने वर्तमान चार्टर के सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन किया है, उसे सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासभा द्वारा संगठन से निष्कासित किया जा सकता है। रूस को निष्कासित करना असल में असंभव है, क्योंकि वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और अपने खिलाफ ऐसी किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए वो वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के वीडियो संबोधन को परिषद की परंपराओं तथा उन मौजूदा सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया, जिसके अनुसार किसी भी नेता को परिषद में अपनी बात रखने के लिए कक्ष में उपस्थित होना चाहिए। दिमित्री पोलांस्की ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को राष्ट्रपति जेलेंस्की के नाटो के सदस्य देशों से अधिक हथियार प्राप्त करने के लिए एक प्रचार अभियान का मंच नहीं बनना चाहिए। फॉर्मूला वन टीम रेड बुल ने ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रीम के दौरान नस्ली टिप्पणी करने के लिए फॉर्मूला वन टेस्ट और रिजर्व ड्राइवर ज्यूरी विप्स का अनुबंध रद्द कर दिया है। एस्टोनिया के 21 साल के विप्स को रेड बुल ने पिछले हफ्ते उनके द्वारा इस्तेमाल भाषा की जांच लंबित रहने तक निलंबित किया था। विप्स ने इसके लिए माफ़ी मांगी थी। रेड बुल ने ट्वीट किया, ज्यूरी विप्स से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन घटना की जांच के बाद ओरेकल रेड बुल रेसिंग ने अपने टेस्ट और रिजर्व ड्राइवर के रूप में ज्यूरी का अनुबंध रद्द कर दिया है। ट्वीट के अनुसार टीम नस्लवाद के किसी भी प्रारूप को माफ नहीं करती। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।